नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन एक बार फिर राह पर आता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच सहमति के बाद अब दिल्ली से खबर है कि यहां 7 लोकसभा सीटों पर बंटवारे को लेकर सहमति हो गई है। सूत्रों के मुताबिक तय हुआ है कि आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछले दिनों आप के एक प्रवक्ता ने बयान दिया था कि कांग्रेस की योग्यता के हिसाब से तो एक ही सीट बनती है, लेकिन हम गठबंधन के धर्म का ख्याल रखेंगे। अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी किस आधार पर कांग्रेस को 3 सीटें देने के लिए तैयार हो गई। कांग्रेस पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक से चुनाव लड़ेगी तो आम आदमी पार्टी पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली और दक्षिणी पश्चिमी सीट पर अपनी किस्मत आजमाएगी। राजनीति में कुछ बिना वजह नहीं होता है। आम चुनाव काफी नज़दीक हैं और किसी भी सियासी दल के मन में अपने हिस्से की सीटें दूसरे दल को दे देने की बात नहीं आ सकती। अगर बात की जाए दिल्ली की 7 सीटों की तो ये साफ है कि यहाँ आम आदमी पार्टी कांग्रेस के मुकाबले काफ़ी मजबूत है, लेकिन फिर भी आपने कांग्रेस को 3 सीटें लड़ने के लिए दे दी हैं। ऐसा क्यों? असल में इसके पीछे वजह है कि आप कांग्रेस के साथ दूसरे राज्यों में हुई सहमति। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में 2 सीटें छोड़ने वाली है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 7वां समन भेजा है। ये समन शराब घोटाले से जुड़े मामले में भी भेजा गया है। उन्हें सोमवार 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल 6 बार जारी किए गए समन के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने 19 फरवरी को 6ठी बार ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था और आपने कहा था कि ईडी को सीएम को बार बार समन भेजने के बजाय अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल होने के बजाय ये सवाल करते रहे हैं कि पहले ईडी इस बात का जवाब दे कि वो किस हैसियत से उन्हें पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर वो इस बार भी हाजिर नहीं हुए तो क्या होगा, इसके कानूनी पेंच क्या हैं? जनवरी 2022 में दिल्ली की एक अदालत में दायर पहली चार्जशीट में ईडी ने दावा किया था कि केजरीवाल ने समीर महेंद्रू नाम के एक आरोपी के साथ वीडियो कॉल पर बात की थी और उसे इस ही मामले में दूसरे आरोपी के साथ काम करते रहने के लिए कहा था। अरविंद केजरीवाल इस वीडियो कॉल मामले में आरोपी विजय नायर को माय बॉय कहा था। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहला समन आया तो केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि समन भाजपा के इशारे पर जारी किया गया था। उन्होंने कहा था कि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें गवाह के तौर पर या संदिग्ध के तौर पर बुलाया गया था। केजरीवाल ने यह सवाल भी उठाया था कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें सीएम के तौर पर या आप के मुखिया के तौर पर किस तौर पर बुलाया गया है। अगर अरविंद केजरीवाल इस बार भी ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो ईडी अगला नोटिस जारी कर सकता है और सैद्धांतिक तौर पर तब तक नोटिस जारी करता रह सकता है जब तक कि केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं। हालांकि अगर वो फिर भी जाँच में शामिल नहीं होते हैं तो ईडी 2 काम कर सकती है। एक, वो अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकते हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग कर सकते हैं। दूसरा, मामले की जांच में जुटे अधिकारी उनके आवास पर पहुंचकर पूछताछ कर सकते हैं। इसके बाद अगर अधिकारियों के पास ठोस सबूत हैं तो वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंच चुके हैं। वो गुजरात में 44,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही पीएम ने गुजरात प्रवास में वलीनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी अमूल के स्वर्ण जयंती के उत्सव में शिरकत की। वहीं पीएम मोदी वाराणसी के दौरे के दौरान 13,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गुजरात के मेहसाणा में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे मंदिर सिर्फ देवालय नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा के प्रतीक हैं। पीएम मोदी ने मेहसाणा के वलीनाथ धाम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। यहाँ पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये देश के विकास का एक अनूठा काल है जहाँ देव काज हो या देश काज दोनों ही तेजी से हो रहे हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।